नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। केंद्र ने महाराष्ट्र के वर्धावन में 76,200 करोड़ रुपए लागत के नए बड़े बंदरगाह के विकास को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दौर की बैठक की। दिल्ली में भीषण गर्मी से 16 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी और समय पर उपचार उपलब्ध कराने का परामर्श जारी किया। सऊदी अरब के मक्का में भीषण गर्मी के कारण 550 से अधिक हज यात्रियों की मौत और बेंगलुरु में दूसरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 326 रन का लक्ष्य दिया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, महाराष्ट्र का वर्धावन बंदरगाह विकसित करने और गुजरात तथा तमिलनाडु में पहला पवन टर्मिनल विकसित करने का निर्णय किया है। सरकार ने वाराणसी हवाई अड्डे के विकास और राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना वृद्धि योजना के लिए भी फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में 5 बड़े फैसले किए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि धान, कपास, बाजरा, दलहन, तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देशभर में 2,00,000 गोदाम बनाने पर काम कर रही है।
आगामी समय में इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन है। इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल्स रहेंगे, 4 मल्टीपर्पज बर्थ रहेंगी, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ रहेगी, यानी पेट्रोलियम इम्पोर्ट हो गए, ऑयल इम्पोर्ट हो गया, इन सब के लिए। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय द ज्वाइंट वेंचर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड। इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन 2 फेजेज में होगा। फेज 1 जो 2029 तक कंप्लीट होने का प्लान है।
श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के वर्धावन में सभी मौसम के लिए उपयुक्त नए बड़े बंदरगाह विकसित करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि इस बंदरगाह को बनाने में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी और पूरा होने के बाद ये दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में से एक होगा। श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस दिशा में सरकार ने पहले ऑफशोर पवन टर्मिनल विकसित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात और तमिलनाडु में 500 मेगावाट क्षमता वाली 2 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने 2,869 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। इसमें देशभर में राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के ऑफ कैंपस की स्थापना की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वित्त और कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने आम बजट से पहले आज नई दिल्ली में प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दौर की बैठक की। इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कंपनी कार्य विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने की तैयारी और समय पर उपचार उपलब्ध कराने का परामर्श जारी किया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज गर्मी की स्थिति और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अस्पतालों में भीषण गर्मी की चपेट में आए रोगियों के उपचार के लिए विशेष इकाइयां खोले जाने का निर्देश दिया। इस बीच दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी से 16 लोगों की मौत हुई है। अस्पतालों में बड़ी संख्या में लू के मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिसिन के प्रोफेसर अजय चौहान ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए भीषण गर्मी से संबंधित बीमारियों से दूर रहने के लिए अनेक सावधानी बरतने पर जोर दिया।
हल्के कपड़े पहने और हल्के रंग के हों, कोशिश करें कि सूती हों। दूसरा, बहुत ज्यादा जब धूप हो बाहर, उस वक्त बाहर जाना जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो हमें उससे बचना चाहिए। तीसरा, अगर हमें जाना ही पड़ जाए किसी वजह से धूप में, तो हमें नियमित तौर पे, चाहे हमें प्यास लगे चाहे ना लगे, नियमित तौर पे हर आधे घंटे में, हर 45 मिनट में हमें पानी और नमक थोड़ा सा उसमें डाल के, ORS का घोल या फिर हमारे जो पारंपरिक पेय पदार्थ हैं जैसे कि शिकंजी, नींबू पानी, आम पन्ना, छाछ वगैरह, ये पीते रहने चाहिए ताकि हमारा अंदरूनी तापक्रम थोड़ा सा स्टेबल रहे।
मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में कल से शुक्रवार तक लू से आंशिक राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम वैज्ञानिक आरके जैनामणि ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में आंधी और बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि अल नीनो कम होने के कारण आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 5 दिन मध्य और पूर्वी भारत में आगे बढ़ने की संभावना है। देशभर में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग में तेजी आई है। कोयला मंत्रालय ये सुनिश्चित कर रहा है कि देश के ताप विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध हो। देश में इस वर्ष कोयला आधारित बिजली की अब तक की सबसे अधिक मांग है। पिछले वर्ष की तुलना में बिजली की मांग में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में टैंकर से पानी के वितरण केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई इलाके अब भी पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इसके कारण दिल्ली में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र भी पानी की कमी से प्रभावित है। दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एक अन्य आरोपी विनोद चौहान की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में मनीष सिसोदिया सहित 38 आरोपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में प्रमुख नेताओं की प्रतिमाओं के स्थान बदलने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मांग की कि महात्मा गांधी, डॉ बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर और अन्य प्रमुख नेताओं की मूर्तियों को परिसर में उनके मूल स्थानों पर वापस लगाया जाना चाहिए। श्री खड़गे ने आज इस विषय में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा। लोकसभा सचिवालय ने पहले से ही प्रतिमाओं का स्थान बदलने के आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि इन प्रतिमाओं को संसद भवन परिसर से नहीं हटाया गया है। बीजू जनता दल अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे। उन्हें आज भुवनेश्वर में पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य में 24 साल तक शासन करने वाले बीजू जनता दल हाल ही में विधानसभा चुनाव हार गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बिहार के राजगीर में आज नालंदा विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अपनी शिक्षा और ज्ञान प्रणाली को मजबूत कर महाशक्ति का स्थान हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री कल जम्मू कश्मीर में 1,500 करोड़ रूपये से अधिक की 84 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 2,000 से अधिक नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री मोदी योग सत्र में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कल जन्मदिन है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी के साथ उनकी विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण करेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी गोल्ड और सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर सुबह 8:45 से किया जाएगा। ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल और अन्य मीडिया चैनल पर सुनी जा सकती है। भीषण गर्मी के कारण 550 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई है। इसमें मिस्र के 320 और जॉर्डन के 60 जायरीन की मौत की पुष्टि हुई है। 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। बेंगलुरु में महिला क्रिकेट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय मैच में रोमांचक मुकाबले में 4 रन से हरा दिया है। भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 325 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 321 रन ही बना पाई। कप्तान हरमनप्रीत कौर और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार शतकीय पारी खेली। T20 क्रिकेट विश्व कप में सुपर 8 का पहला मुकाबला आज अमरीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 117 रन बना लिए थे। भारत अपना पहला मैच कल अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की। केंद्र ने महाराष्ट्र के वधावन में 76,200 करोड़ रुपए लागत के नए बड़े बंदरगाह के विकास को भी मंजूरी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श के पहले दौर की बैठक की। दिल्ली में भीषण गर्मी से 16 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को गर्मी से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए तैयारी और समय पर उपचार उपलब्ध कराने का परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।